قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، بس نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یا آپ کو اور مجھے کہا جا رہا اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، تمہیں اب اتنا علم لے کر لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ تم لوگوں کے سحر کا شکار ہو، تم لوگوں سے متاثر ہوتے ہو، ان کے ننگے کپڑوں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہو، آئے غور لکی دے یار کہ انہوں نے قرآن کا کورس نہیں کیا، کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتا، میں تو یہ پہن ہی نہیں سکتی. ایمان تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب تمہیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر لگے، جس کام کا وہ حکم دے وہ کرو، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. یا پھر دیکھیے اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، قل 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 کہہ کر اللہ کے نبی سے کہلایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کرنے کا یہی انداز ہے. یا ایو الذین آمنو کا انداز مدنی صورتوں میں پایا جاتا ہے، مکی صورتوں میں اللہ کے نبی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہہ دو، کن کو؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی حسن ہے. مت سوچو کہ علم پہ عمل کرو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، علم پہ عمل کرنے سے عزت ملے گی، بڑائی ملے گی، محبت ملے گی، سچی خوشیاں ملیں گی. ورد اللہ واسعہ، اور رہ گئی بات کہ عمل کر نہیں پا رہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چھوڑ دو جگہ، وہ آتے چھوڑ دو، وہ ماحول چھوڑ دو، وہ دوستے چھوڑ دو، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں سے تمہیں کفر کی اور گناہ کی یادیں آتی ہیں. اگر مکہ میں رہتے ہوئے توحید پہ نہیں چل رہے تو چھوڑ دو اس کو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہجرت کے ساتھ صبر تو ہے، ہجرت صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو کہا اگر پھر صبر کرو گے تو صبر پار والے اجر تو بہت پائیں گے، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. کتنا؟ بغیر حساب. یہاں نوٹ کیجئے گا لفظ یوفا، اجر کے حوالے سے یہاں یوفا کا اصول ہے، کیا؟ بغیر حساب، انلمیٹڈ، پورا فضل، پورا پورا بدلہ دینے کے بعد اللہ کا مزید فضل ہوگا، اور اللہ کے فضل کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تمہارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حساب کے باٹ ناپ سکو اور گن سکو. جو اللہ کے راستے میں جتنی مشکل سہے گا، کئیوں کو اپنی بری عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نیند چھوڑنی پڑتی ہیں، عادات چھوڑنی پڑتی ہیں، رویے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور اگر ملک اور جگہیں بھی چھوڑنی پڑیں، گھر بھی چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دو. ہر ہجرت کے بعد خیر ضرور ملتی ہے، یہ میں آپ کو پورے ایمان سے کہہ سکتی ہوں. پھر انسان جب اللہ کے لیے کوئی جگہ چھوڑتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کے پیچھے کیا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس قربانی کے پیچھے دکھا مجھے ملنا کیا والا ہے، اس کے بعد تو یہ ملا تھا، اس کے بعد تو یہ ملا تھا، اب اس کے بعد کیا ملنا ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پہ عمل کر سکے. دوبارہ وہی بھولا ہوا سبق جو شروع کی آیتوں میں دیا یہاں دے دیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. بالکل آیت نمبر 2 والی بات ہے ادھر، اور یہی ٹاپک ہے اس پوری سورت کا، آپ کہہ سکتے ہیں پلر آف دی سورہ، بار بار آپ پڑھیں گے یہی بات ہے کہ جانے سے پہلے اپنے عمل کو پکا کر کے جاؤ. تم اپنے عمل میں پکے ہوگے دوسروں کو بھی لے جاؤ گے، اور اگر تم ڈھیلے ہوگے تو دوسروں کو بھی ڈھیلا کر دو گے اور باتیں بھی سنو گے. بظاہر جن باتوں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ، بعد میں پھر تانے دیتے ہیں، تم وہی تھی جو قرآن پڑھ کے آئی تھی، تمہاری تو میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، میرے خیال میں تو تم بڑی نیک بچی تھی، میرے خیال میں تو تم بڑے نیک مرد تھے. کتنے ہمارے اوپر ونیر چڑھے ہوتے ہیں نا نیکیوں کے نام کے، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو نیک ہو گئے، روزے رکھے تو نیک ہو گئے، باقی ہماری زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ہماری دنیا کی چاہت، ہماری چیزیں، اس کو چھوڑ دو، یہ تو دنیا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں، دین، طرز زندگی، عادات ہیں. ایک ایک چیز سے دکھنا چاہیے کہ آپ کتنے دین والے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے، کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، بات کرنے سے، پھر انشاءاللہ انسان ایک خوبصورت نمونہ بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ عبادات کا ظاہر اس کی رسومات ہیں، اور رسم کسی شے کی ظاہری چیز کو کہتے ہیں نا. بس اگر آپ دیکھیں کہ لکھتے ہیں نا تو جو حروف اور الفاظ ہوتے ہیں ان کی ظاہری شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا رسم الخط جو رسم عثمانی ہے، اس کی ظاہری شکلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ نماز، اس میں کھڑے ہونا، اللہ کی حمد کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت کے مراسم ہیں، رسمیں ہیں. یہ بعض مذاہب میں اپنے معبود کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی سلیوٹ مارتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی سجدہ بھی کر لیتا ہے. तो इबादत के जो मरासम है ना वो उसकी जाहर है, लेकिन ये सिर्फ जिस्म है। आप कितनी लंबी नमाज पढ़ती हैं ये पता चलेगा आप कितनी देर अल्लाह के सामने खड़ी हो सकती हैं। क्याम क्या है कि अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो गए, मुखालफतों के बावजूद जम गए। इस तरह से इंसान की इबादत का भी जिस्म भी है तो इसकी रूह भी है, और असल रूह क्या है, जसद। अगर आप इस सूरत के साथ एक तस्वीर बना लेना ऐसे ही एक हैंगमैन सा, तो जो उसकी बाहर की शक्ल है ना ये वो इबादत है जो मेरी और आपकी नमाज रोजे की सूरत में है। अंदर एक रूह का जो मोती है ना वो उस इबादत का असल है जो इताअत के मौके पे दिखता है, जो खुशी के, गम के, शादी के, मौत के वक्त पे दिखता है, जो एक एक चीज में दिखता है। और याद रखिए कि इबादत अब्द, अब्द गुलाम, गुलाम जो है वो कौन सा होता है जिसकी आंखें झुकी होती हैं। अल्लाह अकबर। सूरत मोमिनून में मूसा और हारून के बारे में क्या आया, फिरौन का कॉल, वकौमुहुमा लना आबिदून, कहता था इन दोनों की जो कौम है ना वो तुम्हारी गुलाम है। कौन सी गुलाम थी? वो तो जिस्मानी गुलाम थी। आज हम मुसलमान जहनी गुलाम नहीं हो चुके फिरौनियत के? आज क्या ये इबादत हमारे अंदर नहीं है? इसी तरह आप देखिए कि हजरत मूसा ने सूरह शुरा 22 में क्या कहा था फिरौन को, वतिल का नेमतुन तमन्नुहा अलैया आना बत्ता बनी इसराइल, कि ये एहसान जो तू मुझे जतला रहा है कि इसका ये बदला है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। तो याद रखिए आज हम मुसलमान जहनी गुलाम है, इन गुलामियों से निकलने की जरूरत है। कभी बनी इसराइल ने फिरौन की पूजा नहीं की थी। किप्ती कभी भी फिरौन के आगे वैसे नहीं खड़े होंगे कि उसके नाम की नमाजें और रोजे करें, लेकिन वो जहनी गुलाम थे, इताअत करने पे मजबूर थे। तो लिहाजा बंदगी और गुलामी को समझते समझते इस सूरत में आगे जाना है कि अगर हमारी जाहरी इबादत जिस्म की सूरत में अच्छी है तो उसकी रूह अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है। और ये जो पीछे हमने पढ़ा ना कि वो रात को भी पुकारते हैं खौफ और उम्मीद से, यही ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लम एक शख्स के पास गए जो निजा की हालत में था, पूछा क्या महसूस कर रहे हो? कहा अपने गुनाहों का खौफ लेकिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद है। कहा अंता मोमिन, अल ईमानु बैन अल खौफ वर रिजा, बिल्कुल बेखौफ भी नहीं होना और बिल्कुल अल्लाह ताला से इतना खौफ ज़्यादा भी नहीं होना कि स्ट्रेस में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। आप कह सकते हैं कभी जबरी इताअत करनी पड़ती है और कभी इंसान अपनी खुशी से करता है। 1947 से पहले बरे सगीर में हम मजबूर थे अंग्रेज की इताअत पे, वो जबरी इताअत थी। आज आप देख सकते हैं कि हमारी अपनी मर्जी की इताअत है, कोई हमें मजबूर नहीं करता, हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। इमाम इब्ने तैमिया का नाम सुना होगा और इनके शागिर्द इब्ने कय्यम इबादत की बड़ी खूबसूरत रिवायत है तारीफ करते हैं, क्योंकि ये पूरी सूरत में हम करते ही जाएंगे तो नोट कीजिएगा अगर कर सकें। कहते हैं कि अल इबादतु तजमाउ असलैन गायतुल हुब्बी मा गायतुल जुल्ली वल खुदू। उर्दू में क्या तर्जमा है? अल्लाह की इबादत दो चीजों के मजमुए का नाम है। अपने दिल के ऊपर लिख लें इस बात को, अल्लाह की इबादत दो चीजों के मजमुए का नाम है। क्या? इसके साथ गायत दर्जे की मोहब्बत, गायत कहते हैं इंतहाई शदीद, इसके साथ गायत दर्जे की मोहब्बत और इसके साथ गायत दर्जे का तजल्लुल और आजजी। क्या समझ आई? कहते हैं कमाल अल हुब व कमाल अल जुल, मोहब्बत इतनी कि अल्लाह से बातें हो रही हैं लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने का तसव्वुर आए तो खशियत तारी हो जाए, रोने ही लग जाए बंदा। खुलासा क्या है कि इबादत दो चीजों का नाम है, मोहब्बत की शिद्दत और अल्लाह के आगे आजजी। इंसान हद दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के साथ करे, खुद को बिछा दे, उसकी बात माने, उसकी मोहब्बत के जज्बों में सरशार हो और जब मौका पड़े बस करके दिखा दे, लेकिन दिल में उसके बारे में कोई अकड़ ना हो कि अब इबादत कर चुका हूँ इतनी कर ली। और याद रखिए कि अल्लाह की इबादत ही वो चीज़ है जो बंदे को दूसरों से बेनियाज करती है। इसको नहीं मानेंगे ना तो बहुत सारों की माननी पड़ेंगी। सूरत बकरा 208 में अल्लाह ताला कह चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरी नहीं करोगे तो जुज़्वी भी नहीं मानूंगा, सॉरी चले जाओ। आप किसी को टूटी हुई रोटी दें तो लेता है कोई? अगर आप बेच रहा हो कोई शख्स कारोबार के लिए तौर पे, तो आप उसको टूटा हुआ समोसा दे दें तो लेगा? ये अगर सब टूटे हुए निकले, अंडे टूटे हों तो लेगा कोई? तो अल्लाह टूटी फूटी बातें नहीं लेता ना। अल्लाह 25% पे जाता है ना 50 पे। अल्लाह को 75% नहीं चाहिए, अल्लाह को 80% नहीं चाहिए, अल्लाह को 95% नहीं चाहिए, अल्लाह को 99.9% भी नहीं चाहिए। अल्लाह को 100% चाहिए। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? ये है वो रूह जो मतलूब है। ये नबियों के किस्से पढ़ना कोई आम बात नहीं है। नबी कभी 99% पे नहीं रहते। हम कहते 33% आगे पास तो हो ही जाएंगे ना। पता नहीं कौन सा दौर है जो 33 पे पास कर देता है लोगों को। शायद मैं किसी तालीम में चली जाऊं तो मैं वहां पे क्या कर दूं। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह को एक दर्जा नीचे करेंगे अल्लाह कहते भाग जाओ, गेट आउट, मुझे नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं 5-10% अल्लाह के, बाकी सब अपने लोगों के, दुनिया के टरखाते हैं हम अल्लाह को। अल्लाह को ऐसे मेयार की इबादत पे क्या वो जन्नत देनी है जो 100% प्योर है? कभी भी नहीं। आज ये टेढ़ी सोच है जिसने हमें बेअमल किया हुआ, और अल्लाह माफ करे हम जैसे दीनदारों ने लोगों को तसल्लियां भी दी हुई हैं, जो होता है कर लो बाकी छोड़ दो। सुना था ना क्लिप, देखा जाएगा क्या होता है। देखा नहीं जाएगा, लग पता जाएगा, जिस्म के एक एक जोड़ में से निकलेगा। और ये सब सच है, ये होगा, मौत आएगी, क्यामत आएगी, लोग हमें कब्र में डालेंगे, हम वहां बरज़ख का वक्त गुजारेंगे, फिर क्यामत के धमाकों से हम उठेंगे, फिर हशर के मरहले होंगे, पुल सरात होगा, लोगों को अपने सामने आता जाता देखेंगे, फिर पता चलेगा। और याद रखिए, यहां आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक आज शुरू हुआ है, आप कहेंगे इतनी बात किस पे हो रही है, आप कह लें कि ये सूरत जो है ना, सूरत जुमर, ये जड़ है इस मजमून की, और आप सूरत शूरा में जाके देखेंगे, फिर आपको इसकी पीक दिखेगी। अल्लाह हमें ऐसे नहीं जाने देगा। वो पता नहीं कौन सा कुरान लोग पढ़ के जाते हैं, पढ़ने के बाद नाए धोए साहब, मुझे तो नहीं अल्लाह जाने देता कभी। हालांकि आज भी मुझे इतनी जल्दी है, लेकिन मेरे से आगे जाया नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, हक की नहीं आपका दे पाऊंगी। ये आयतें ऐसी हैं कि जो हमें चाहती हैं कि हम लोग, मैं ऐसे गुजर जाऊंगी, आप कहेंगे वो बस सूरत ज़ुमर पढ़ी, आसान सी थी, हमने पढ़ ली, तर्जमा आसान है, सारी बातें रिपीट हो रही हैं। इन आयतों पे फैसले करें, इन आयतों पे खुद को बांधें, इस पे मुहासबा किया करें। आपको कोई क्या नंबर देगा? आपके पेपर कोई क्या चेक करेगा? आपकी रिपोर्टिंग क्या होगी? आपने फला मौके पर क्या किया, क्या नहीं किया, जिम्मेदारियां निभाई ना दी? आपका अपना दिल गवाह होगा कि क्या किया। और आप याद रखिए कि सिर्फ मुझे और आपको नहीं कहा जा रहा, नबी को भी यही हुक्म था, वो मेर तो लियान अकून अव्वल अल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म हुआ कि सबसे पहला फरमा बरदार तो मैं खुद बन जाऊं। हमारा दीन ये नहीं है कि पॉप का रिलीजन और है और लोगों का और है, नबी का दीन और है तो उम्मत का और है। कहा इसलिए मुझे भी ये हुक्म है, ये वजह कि अल्लाह के नबी को रातों को नींद नहीं आती थी, ये वजह कि दिन को चैन नहीं था आपको। कहा ये नहीं हो सकता कि तुम्हें फरमा बरदारियों की दावतें दो और मुझे परवाह ना हो। ये नहीं हो सकता कि पीर साहब को नमाज की जरूरत ही नहीं। किसी ने कहा कि एक मौका था तो वो बेटी के इलाज के लिए कहीं गए, और जब उनके घर उनके पीर साहब आए तो रमजान थे, कहती हम सब रोजे से थे, तो उन्होंने कहा कि पीर साहब के लिए चाय भेजे, ट्रॉली भर के चाय की अंदर गई, खाना भर के, कहा क्या, कहते ये पीर साहब हैं, ये रोजे नहीं रखते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, कह लें या सुना हुआ वाक्य, बड़े क्लोज से बता रही हूँ आपको। पीर साहब, पता नहीं उनको शुगर थी या क्या थी, अल्लाह ही जाने, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रमजान के अंदर पीर साहब के लिए खाना अंदर गया, और सोच गया कि वो रोजे नहीं रख सकते। लिया बोला, जिसको आप कहें कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बात हमारे दीन में आती है। जब इंसान इस तरह के काम करते हैं ना तो फिर फायदा होता है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबकी नजरें हम पे लगी हुई है कि हम क्या करते हैं। और दूसरी सोच जो इंसान को अमल पे लाती है ना, इसको हाईलाइट करके याद करें। मैं हर सेशन में स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये आयत याद करें। पीछे भी गुजरी थी गालिबन सूरत अलनाम में, लफ्जों का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, या सूरह यूनुस में भी आती है। कभी आपको कोई गुनाह की दावत दे, मेरी खातिर प्लीज डार्लिंग मेरी बात मान जाओ, या बिटिया मेरी बात मान जाओ, या बेगम मेरी बात मान जाओ, एक लफ्ज कह दीजिए, कुल इन्नी अखाफ इन असईत रब्बी अज़ाब यौम नज़ीम। आप कह दीजिए मुझे खुद अंदेशा है इस बात का, एक बड़े दिन के अजाब का, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं। देखिए लोग कहते हैं शौहर नाराज होते हैं, फिर आगे बात करें तो कहते हैं बहस ना किया करो, बहुत लंबी जुबान हो गई है। ये आयत याद कर लें। गंदी चीज देखने को कोई कह रहा है, गंदी जगह पे जाने को कह रहा है, गंदी बात बोलने को कह रहा है, किसी का कोई गंदा मुतालबा आपसे है, ये आयत सुना दे कि इन्नी अखाफ इन असईत तो रब्बी अजाब यौम नज़ीम, और समझ आ रही होगी ना तो रो ही पड़ेंगे आप तो। भाई मुझे रब की पकड़ का डर है। और मुझे ये बात कहते हुए वो औरत याद आ गई जो किफल के हाथ में आई थी, कि जिसने कुछ पैसों की मजबूरी की खातिर उसकी शर्त मान ली, लेकिन जब वो उससे बुराई कर रहा था तो हदीस में आता है पत्ते की तरह कांप रही थी वो औरत। तो उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने की या किफल इत्तक इल्ला, ए किफल अल्लाह से डर जा, कहा मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया, मुझे रब से डर लगता है। और उसने फिर उस औरत को आज़ाद किया, और फिर उसके बाद किफल भी मर गया उसी रात। कभी हम सोचते ये न सही तो रब भी अजाब यौम नजीम, हम लाड में इतने लाडले बन जाते हैं जैसे कहते हैं अम्मा भी बुरे कामों के बाद फिर गले से लगा ही लेती है, अल्लाह भी लगाएगा, लगाएगा, शर्त है क्या पलट कर आए। तो लिहाजा एक इसमें यह भी इशारा है कि मैं खुद भी मुख्तार नहीं हूं लोगों, मैं नबी हूं, तुम मुझसे आके मांगते हो, मुझे तो अपने ऊपर फिक्र लगी हुई है। कोई इस्तिस्ना नहीं, नो वन इज एग्जेम्प्टेड इन अल्लाह कोर्ट, अल्लाह का कानून बेलाग है। यकीन करें यह शर्त, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे अजाब का अंदेशा है, यह शर्त या फिक्र है। और यूं समझें कि इसके दरमियान का अगर, अगर आप निकाल दें ना लफ्ज इन अगर, तो गोया एक पहाड़ है जिसे फैलांगना नामुमकिनात में से है। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं करना था ऐसा, लेकिन सिर्फ मामले की संजीदगी का एहसास दिलाने के लिए कहा गया कि अगर मैंने नाफरमानी की तो अल्लाह मुझे पकड़ेगा। कुलिल्लाहुबुद मुखलिसल्लहुद्दीनी, तीसरा मुकाम है 14 आयतों में, फिर वही बात, कह दीजिए मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ इसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए, बार बार, लेकिन हर बार पढ़ने में एक नया हुस्न है, नई तासीर है। जबकि हम इंसानों की दुनिया में किसी इबारत के अंदर अल्फाज या मजमून को बार बार पढ़ें ना तो बुरा लगता है, ऐब लगता है, कहते हैं ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम की फसाहत और बलागत है, ये मौजज़ा है, तकरार कलाम से हुसन और बढ़ रहा है, और इससे पता चलता है कि मजमून कितना अहम है। आप कह लें कि एम्फेसाइज किया जा रहा है, महसूस करो, शायद उस वक्त तुम्हारी तवज्जो कहीं और थी, शायद उस वक्त तुम सेलफोन से खेल रहे थे, फिर सोच लो कि अल्लाह की इबादत करो, सोच लो, सोच लो। थोड़ा सा पीछे से पूरी इन आयतों को जमा करके देखें ना, तो आयत 2 में क्या आया था, इन नंजल नई कल किताब अबिल हक की फाबुदिल्लाह मुखलिसल्लहुद्दीन, ठीक है, आयत 2 में आ गया था, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या कह दिया, कुल इन्नी उमिरतु अन अबुदुल्लाह मुखलिसल्लहुद्दीन, ए नबी आप कह दें कि मुझे तो ये हुक्म है कि मैं इताअत करूं। और अब आयत 14, कुल अल्लाह अबुदु मुखलिसल्लहुद्दीनी, कितनी तकरार है, इसरार पे इसरार है, ऐसे लगता है अल्लाह ताला चाहते हैं हम इसी पे बात करते ही जाएं, करते जाएं। और इसके बाद ख़त्म, फाबुदु माशी तुम इन दोनी ही, इतनी मोहब्बतों से बताने के बाद अब इख्तियार तुम्हारा है, जाओ जिसकी चाहो इबादत करो, जिसको मर्जी अपना खुदा बनाओ, जिसको मर्जी पूजो, जिसकी मर्जी इताअत करो, लेकिन एक बात याद रखो, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौम अल क़ियामा, कि असल में खसारे में रहने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को और अपने अहलो याल को खसारे में डाल दिया क्यामत के दिन। आ गई ना वजह, क्यों नहीं कर पाते अल्लाह की इताअत, घर वाले, बच्चे, खानदान, अल्लाह कहता है बैंक करप्सी में पड़ जाओगे, ये जो खसारा लफ्ज है ना ये बैंक करप्सी है। आज दुनिया में जब पूरी इताअत की बात की जाती है ना, देखिए बात गौर से सुनिएगा, इताअत की नहीं, जब पूरी इताअत की बात की जाती है ना तो हमारे जहन में कुछ रिश्ते आ जाते हैं, शौहर बेचारे मजलूम कह ले, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन हम हर बात में शौहरों का नाम लेके पक्के, बच्चे, सास, रिश्तेदार और कुछ नहीं तो बस कहते हैं दुनिया के हालात इतने ख़राब है कि पूरी इताअत हो ही नहीं। अल्लाह कहता है याद रखो वो लोग खसारे वाले हैं जो अपने साथ अपने घर वालों को आग में डालेंगे। यहाँ तो हराम खोरी के जरिए औलाद को मज़े करा लिए, अपनी बीवी बच्चों को ऐशो इशरत का सामान दिया, आज बच्चों को गलत काम करते देख के ना रोका ना टोका, ना उनके पहनने पे ना ओढ़ने पे, कल क़यामत के दिन खुद भी और उनको आग में डालोगे। यही बात आगे हम पढ़ेंगे सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में, कि या अय्युल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन, ए लोगो जो ईमान लाए खुद को और अपने घर वालों को आग से बचा लो, और जो खुद अपने बच्चों को आग में डाले तो कैसे होगा। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, याद रखो ये खुला खसारा है, वो बाप मुखलिस नहीं है जो अपने बच्चों को हराम खिलाता है, और वो माँ मुखलिस नहीं है जो नमाजों पे अपने बच्चों को नहीं उठाती, जो अपनी बच्चियों के लिबास की फिक्र नहीं करती, जो रिश्ते नाते ढूंढते वक्त अपने बच्चों के दीन को नहीं देखते, वो बच्चों के दुश्मन है। होगा क्या, लहुम मिन फौकिहिम दुललुम मिनन नार, इनके लिए इनके ऊपर से भी आग के बादल होंगे, दुलल जिल की जमा, व मिन तहतिहिम दुलल, और नीचे से भी आग के भभोके लग रहे होंगे, तह बतह आग होगी। इमेजिन कर सकते हैं, कंफर्टर को भी आग लगी हुई है और मैट्रेस को भी आग लगी हुई है और बीच में रोस्ट हो रहा है इंसान। ज़ालिकम युख़व्विफुल्लाहु बिही इबादा, ये है वो शायद जिससे अल्लाह डराता है अपने बंदों को। अब मुझे बताइए, ये आयत नरम आवाज से पढ़ने वाली है? हंसते खेलते कूदते पढ़ सकते हैं? ज़ालिक युख़व्विफुल्लाहु बिही इबादा, कर सकते हैं इन आयतों को ओवरलुक? अल्लाह कहता है ये है वो तरीका जिससे मैं अपने बंदों को खौफ दिलाता हूँ। या इबादी फत्तकून, ऐ मेरे बंदो मुझसे डरो, मेरी इन वईदों से डरो, जहन्नुम की आग से डरो, नाफरमानियों से बचो। वल्लज़ी नजतबुत तागूत आई याबुदूहा, और वो लोग जिन्होंने तागूत से किनारा कशी इस तरह की कि इनकी बंदगी ना की। तागूत बार बार आता है कुरान में, सूरत बकरा 257 में पढ़ चुके। फमै यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का, जो भी तागूत का इनकार करे फिर अल्लाह पर ईमान लाए, इसने मजबूत हलका थाम लिया। तो तागूत तगा से, सरकशी, तो गयानी भी इसी से। दरिया अपने किनारों के अंदर बहे तो बड़ा खूबसूरत लगता है, और जब अपनी हदों से बाहर आते तो कहते हैं दरिया में तो गयानी आ गई, समंदरी तूफान आ गया। इसी तरह याद रखिए, अगर इंसान अल्लाह की बंदगी की हद में रहे तो वो अल्लाह का बंदा है, इसकी तरफ से भेजा हुआ खलीफा है और अशरफुल मखलूकात है। लेकिन अगर बंदगी की हदूद से तजावुज कर जाए तो वो तागूत बन जाता है, चाहे वो फिर किसी का रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई इदारा, कोई शख्स, कोई कौम, चाहे वो नफ्स के तकाजे पूरे करते हुए नफ्स का बंदा बन जाए, या किसी और को अपना मुता बना ले, खुद हाकिम बन बैठे, या अल्लाह के सिवा किसी की हाकमियत का ताक गले में डाल ले, अल्लाह की नज़र में वो तागूत है। इसलिए अल्लाह कहता है इससे बचो, दुआ करिए अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे। फिर दूसरा मरहला उसके बाद आएगा, वनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, और उन्होंने रजू कर लिया अल्लाह की तरफ। शर्मिंदगी, एक आंसू है कसम से अगर हमारी आंख में आई इन आयतों को पढ़ते हुए, हमारे दिल इतने सख्त हो चुके, इतने हम बेखौफ हो चुके अपने रब से, हमें आंसू नहीं आते इन पर। सर्दी से आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में, किसी की मौत की खबर सुन के आंसू आ जाते हैं, किसी के मुंह से गाली सुन के आंसू आते हैं, नहीं आंसू आते हमारे आंखों में तो कुरान की आयतों पे नहीं आते। ऐसे लग रहा है अल्लाह कह रहे डर जाओ डर जाओ। ज़ालिका युख़व्विफुल्लाहु बिही इबादी या इबादी फत्तकूनी, और हम टस से मस नहीं होते, क्या है कि हमारी लुक ना खराब हो जाए। अल्लाह कहता है डरो, खौफ खाओ। फबशर इबाद, अगर कर गए रजू अल्लाह की तरफ, लहुमुल बुशरा, फिर खुशखबरी हैं, फिर बिशारते हैं, फिर मेरे बंदों को बिशारत दो। कौन होते हैं वो? अब आगे लिस्ट तैयार कर लीजिए ऐसे लोगों की, कौन हैं बिशारतें पाने वाले। नंबर एक, अल्लज़ीना यस्तमेउन अल-क़ौल, यहाँ वन लिख लीजिए, जो लोग बात को तवज्जो से सुनते हैं। आप कहेंगे सब चुप करके तो सुनते हैं, नहीं, ये तवज्जो नहीं होती, अंदर के भी सारे स्विच ऑफ करें, सोचों के, तफक्कुरात के, खुशी के, गम के, बीमारियों के। और समिया नहीं है, इस्तमिया, याद रखिए ये पहला मरहला है। जिस चीज की दावत अल्लाह तुम्हें दे रहा है उसका पहला दर्जा सुनना है। सूरत तौबा में हम पढ़ चुके हैं कि हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, इनको 4 माह की मोहलत दो ताकि अल्लाह का कलाम सुने, शायद इनका दिल बदल जाए। सूरत मुल्क में जहन्नमी क्या कहेंगे, लो कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश हम सुनते और अकल इस्तेमाल करते, आज जहन्नमी ना होते। अल्लाह अकबर। फिर दूसरा मरहला लिखिए, फयत तबेउना अहसनहू, फिर इसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। क्या बात है, कुरान तो सारे अहसन अल हदीस है, यहाँ अहसन हो क्या है? पीछे याद है बात हुई थी सूरह नहल में, अहसन क्या काबिले अमल बातें। सिर्फ यही ना सोचते रहो कि सहाबे कहफ कैसे थे, उनके कुत्ते का रंग क्या था, और वो कितने थे, और हरूफ मुकत्तात का क्या मानी है, बल्कि कुरान के वो हिस्से हाईलाइट करो जिसमें अमल की बात हो, और बेहतरीन तफसीर कुरान की वो होती है जिसमें अमल की बातों को हाईलाइट किया जाए। फिर पैरवी करना, फयत तबियो नाक्सनहू, फिर उसकी अच्छी बात को देखें। देखिए पहला दर्जा, यानी अल्लाह जिस दीन के हमें दावत देते हैं ना, उसके मरहले हैं। पहला दर्जा इस्लाम, इसके बाद ईमान, और उसके बाद एहसान। और दर्जा एहसान पे जो लोग फायज होते हैं उनको अल्लाह कहता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, सूरत माईदा आयत 93 में भी हमने पढ़ा था। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? ہر معاملے میں اپنے دین کے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہر لمحہ بہتر سے بہتر درجے پر پہنچنے کی فکر، ڈھیلا پن ختم، سستیاں ختم، ڈر فنا چھوٹے، سوچو غم کرو اضطراب پیدا کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دین کے معاملے میں ہمارا طرز عمل بالکل برعکس۔ دنیاوی معاملات میں تو وہی مولانا حالی نے کیا کہا تھا کہ ہے جستجو خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ کہتے ہیں ذرا اور نا دکانیں چار پھر لیں، شاید کوئی اور اچھا کپڑا بھی دکھ جائے، کوئی اور سستی چیز مل جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، کوئی سیل کا سائن ہے، کہیں کوئی کوپن رکھا ہوا، دور ہے تو کوئی بات نہیں، چلیں باتیں کرتے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دین کا معاملہ ہے، کہتے ہیں اوکے کم سے کم دیکھا جائے گا کیا ہوگا، تھوڑے سے بھی راضی چلو ٹھیک ہے نا، اس اوکے گنجائشیں، رخصتیں، رعایتیں، میرے لیے کوئی ہے رعایت، کوئی میرے لیے بھی ہے اس میں ذرا چھوٹ، کچھ مجھے بھی سستا کر دو، کچھ مجھے بھی کر دو۔ خود سے پوچھیں کیا دین کے لیے، دین کی چیزوں کے معاملے میں رخصتیں مانگتی رہتی ہوں، ہمیشہ ایگزمپشن ہی مانگتی ہوں، گزارا نہیں پورا نہیں۔ ہر معاملے کو ہر بندہ اپنا خود جانتا ہے، وقت سے لے کے مال تک کو، کہاں کدھر لگتا ہے۔ ایک 50 پاؤنڈ ہمارے لگ جاتے ہیں، ایک دعوت پہ شاید میرا حل ہے 200-400-500 پاؤنڈ لگ جاتا ہوگا، لیکن پسپائی اختیار کرتے ہیں تو دین کے معاملوں میں۔ اپنی عزت ہے تو ہزاروں کے کھانے کھلائیں گے، اللہ کے دین کی عزت ہے تو 5, 4, 3, 2, 10 بس کافی ہے، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ہم کیوں کھلائیں ان کو جن کو اللہ نے نہیں کھلایا، تو اب ہم ان کو کھلاتے پھریں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم رخصتوں پہ نہ ہو، تو کہا یہ ہے جن کو اللہ نے راہ دکھا دی، ہدایت ان کو مل گئی، اولئک ہم اولو الالباب، یہی ہیں وہ عقل مند، یہ ہیں اصل عقل مند۔ یہاں پہ کردار ایک پورا ہوا، میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے، اس آئینے میں ہمیشہ اپنی تصویر دیکھنی ہے، دوسرے کی نہیں دیکھنی۔ اب اس کے بعد پھر کوشچن ہے، افامن حق علیہ کلمت العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ؟ پھر خاموشی، نو رسپانس، محذوف ہے آگے بات، کیا کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو جنت میں جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ بتائیے جن کے بارے میں اللہ کی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں جانا ہے، آپ جا کے بچا سکتے ہیں؟ اس جملے کے نیچے لکھیے نعت کا شعر کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنی ہوئی ہے نا نعت، اس آیت کے نیچے لکھ لیجیے آپ اس کا، بلکہ بنا دے کوئی چھوٹا سا ایک سائن، تو یہ بھی ایک لوگوں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ کہہ رہے افان تتن کی زو من فن نار، اے نبی جس کو میں نے آگ کی زنجیروں میں ڈال کے پھینک دیا، کہ آپ آ کے اس کو بچا سکتے ہیں؟ تو لوگ کیا بول دیتے ہیں، کیونکہ یہ نعت پڑھیں گے تبھی تو پورا اگلا سال پھر جھوم جھوم کے گناہ کریں گے کہ اللہ کے نبی ہیں بچانے والے۔ اور اسی پہ عیسائیوں کا عقیدہ لکھ لیجئے کفارے کا، کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سب کے گناہوں پہ معاف کرا کے لے جائیں گے۔ اللہ کہتے نہیں، اتمام حجت ہو گیا، اللہ نے سب بتا دیا، آپ گمراہیوں میں بڑھ چکے ہو، دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، اب نہیں پلٹو گے، آگ کا ایندھن بننا ان کا نصیب ہے۔ اس کے برعکس لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اللہ مجھے اس میں کر دے، ہر ایک اپنے لیے تڑپے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے ہوں گے، ہائی رائز، سٹار، 5 سٹار نہیں، 50 سٹار، 100 سٹار، اللہ ان کو جنت میں بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یاد رکھو یہ جھوٹی بات نہیں ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں، وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ کون سا اللہ؟ وہ قدرتوں والا اللہ جس کی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلایا، ینبوع کلف، سورت بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وہی ینابیع ادھر چشمے، آسمان سے پانی اترا پھر چلا دیا اس کو چشموں کی شکل میں پانی میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر نکال لی اس سے کھیتیاں، مختلفا الوانہ، رنگ ہیں ان کے مختلف، دیکھتے نہیں اللہ کی یہ قدرتیں، ثم یہیج فتراہ مصفرا، फिर वो पक कर तैयार हो जाती और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, बिल्कुल पकी हुई, और सुम्मा यजलुहु खुतामा, फिर वो इसको चूरा चूरा कर देता। क्या रोज जिंदगी और मौत नहीं देखते ये पौधों की? कैसे कच्चे कच्चे पौधे निकलते हैं सर्दियों के बाद, हल्की हल्की कुंपले, फिर बरसात आती है, बहार आती है, और इस तरह समर में हर तरफ सब्जा, और जरा ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई तो मुस्वर्रा, और उसके बाद खोतामन, बर्फ में सब ढक जाता है। इन नफीजा अली कल जिक्रा अली उल अलबाब, यकीनन इसमें नसीहत है अक्लमंदों के लिए। ये है मेरी और आपकी जिंदगी के सारे मराहल जो यहाँ फसल के पकने और बनने में आ गई। आप देखिए कि फसल पकने की खुशी होती है ना, किसान कब खुश होता है? जब फसल आती है। हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश खुशी का मौका है, फिर बच्चा परवरिश पाता है, जवान होता है, फिर आहिस्ता जवानी उधेड़पन में, फिर बालों में सफेदी आती है, जवानी की ताकत घटती है, जिस्म के अज़ा कमज़ोर होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान दुनिया से जाता है, मूव होता है। कभी एक दांत टूटे ना, कहा करें आज मेरा दांत फौत हो गया, मूव हो गया, और फिर एक दिन इससे पूरे के पूरे को कब्र में उतार दिया जाता है, जिसमें मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाता है। बिल्कुल मौसमी फसलों का और इंसानों का लाइफ साइकिल एक ही है, थोड़ा सा फर्क है बस कि फसल के उगने से लेकर कटने तक चंद महीने हैं, राइट, और इंसान के 50-60 साल हैं। जिंदगी दोनों जगह मुश्तरक है। आज भी आप देखिए साइंसी नुक्ता नजर से तो दो सब्जेक्ट है ना, बॉटनी और जूलॉजी, दोनों को जमा कर दें तो बायोलॉजी बन जाती है। तो मैं और आप तो ये हैं।
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.